एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया है।
हाँ बिल्कुल,
बारबरा डब्ल्यू टकमन की क्लासिक द गन्स ऑफ ऑगस्ट।
जी।
और ये सिर्फ पहले विश्व युद्ध की कहानी नहीं है,
नहीं, से कहीं ज्यादा है।
ये उन इंसानी फैसलों, गलतफहमियों और उन अटल योजनाओं की कहानी है जिन्होंने दुनिया को एक महाविनाश की कगार पर पहुंचा दिया।
एकदम सही कहा। और कमाल की बात है, ये किताब लिखी गई 1962 में, लेकिन आज भी कितनी प्रासंगिक है।
हाँ, यही तो।
कैसे बड़ी बड़ी योजनाएं धरी रह जाती हैं,
बिल्कुल।
कैसे छोटे छोटे निर्णय जिनके बारे में शायद सोचा भी ना गया हो कितने भयानक नतीजे ला सकते हैं।
और नेतृत्व,
जब दबाव पड़ता है तो कैसे चूक जाता है। सही, तो ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज के लिए भी एक आईना है, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो, सरकारें हों।
या हमारी अपनी जिंदगी भी।
हाँ, आज हम इसी अगस्त 1914 के उस तूफानी महीने और टकमिन के विश्लेषण पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो पहले लेखिका की बात करें, बारबरा टकमिन।
हाँ, ये दिलचस्प है।
वो कोई पारंपरिक इतिहासकार नहीं थी जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वगैरह।
अच्छा।
नहीं, उन्होंने खुद ही सब सीखा, पत्रकारिता से शुरुआत की, स्पेन का गृह युद्ध कवर किया,
अरे वाह।
और फिर इतिहास लेखन में ऐसा नाम कमाया कि दो दो पुलित्जर पुरस्कार मिले उन्हें।
जबरदस्त।
और उनकी वो पत्रकार वाली नजर, वो उनकी लिखाई में साफ झलकती है।
कैसे?
मतलब घटनाओं को कहानी की तरह कहना, किरदारों के अंदर तक झांकना, और भाषा एकदम साफ सीधी।
हाँ, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, वो बताती हैं कि उन घटनाओं के पीछे के इंसान कैसे थे, उनकी सोच, उनका डर, उनकी उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं।
बिल्कुल, चूकमन का मानना था कि इतिहास कोई तयशुदा चीज नहीं है।
हाँ, कि बस होना ही था।
नहीं, बल्कि ये उन विकल्पों का, उन चॉइसेस का नतीजा है जो इंसानों ने उस वक्त चुने।
सोचिए, अलग अलग देशों के ढेरों दस्तावेज, चिट्ठियां, डायरियां, उन सबको पढ़कर एक पूरी तस्वीर बनाना।
और वो भी ऐसी कि आम पाठक भी उस जमाने में पहुंच जाएं, जटिल चीजों को इतना आसान बना देना, ये कमाल की बात है।
तो द गन्स ऑफ ऑगस्ट असल में है क्या चीज?
ये किताब, जैसा आपने कहा, पहले विश्व युद्ध के सिर्फ पहले महीने का, मतलब अगस्त 1914 का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है।
माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं।
हाँ, कह सकते हैं। और टुकमैन का जो मुख्य तर्क है वो वाकई चौंकाता है। वो कहती हैं कि ये युद्ध टाला जा सकता था।
ये कोई होनी नहीं थी।
नहीं, बल्कि ये नेताओं की गलतफहमियों, उनकी सोच की सीमाओं और सबसे बढ़कर उनकी बनाए हुई बेहद सख्त अड़ियल सैन्य योजनाओं का नतीजा था।
और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है ना, योजना का अत्याचार,
बिल्कुल,
टायरानी ऑफ द प्लान।
टॉकमैन कहती हैं कि यूरोप के बड़े देशों ने, खासकर जर्मनी ने, युद्ध के लिए इतनी जटिल और टाइम टेबल पर आधारित योजनाएं बना रखी थीं।
ऐसे वो श्लीफन योजना।
हाँ, जैसे श्लीफन योजना, कि जब संकट आया तो वो नेता खुद अपनी ही योजनाओं के गुलाम बन गए।
पीछे हटने का रास्ता ही नहीं बचा।
रास्ता ही नहीं बचा। सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करना, जिसे मोबिलाइजेशन या लामबंदी कहते हैं,
हाँ,
वो शुरू होते ही बातचीत, कूटनीति, सबके दरवाजे बंद हो गए।
लामबंदी का बटन दबा तो युद्ध शुरू।
बस लामबंदी ही युद्ध बन गई। योजनाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला।
और किताब सिर्फ जर्मनी फ्रांस तक ही सीमित नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। टकमैन कूटनीतिक नाकामी, उस जमाने की राष्ट्रवाद का उबाल,
हाँ, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था।
फौजी सिद्धांतों और जमीनी हकीकत में जो फर्क था, वो सब दिखाती हैं। पूर्वी मोर्चे पर टैनेनबर्ग की लड़ाई,
जहां रूसियों की हार हुई थी।
हाँ, भयानक हार, और भूमध्य सागर में वो जर्मन जहाज गोयबेन का भाग निकलना,
हाँ, वो किस्सा भी कमाल का है।
जिसने आगे चलकर ऑटोमन साम्राज्य को भी युद्ध में खींच लिया। किताब का अंत होता है मान्य की लड़ाई से, जिसने युद्ध का रुख ही बदल दिया।
चलिए, किताब के अंदर थोड़ा और चलते हैं। पहला हिस्सा योजनाओं का है। शुरुआत होती है अध्याय एक, एक अंतिम संस्कार से।
जी,
टकमैन 1910 में ब्रिटिश राजा एडवर्ड सप्तम के अंतिम संस्कार का दृश्य खींचती हैं। क्या कमाल लिखा है।
हाँ, बहुत प्रभावशाली है।
यूरोप के 9 राजा वहां मौजूद थे। एक तरफ शाही ठाट बाट, दूसरी तरफ अंदर ही अंदर सुलगती दुश्मनी, अस्थिरता।
बिल्कुल, एक युग का अंत जैसा।
टकमैन कहती भी हैं कि ये उस पुरानी यूरोप का आखिरी बड़ा जमावड़ा था।
क्या माहौल रहा होगा, और फिर अगले अध्यायों में टकमैन उन सैन्य योजनाओं की परतें खोलती हैं जो असल में बारूद के ढेर जैसी थीं।
सबसे खतरनाक शायद श्लीफेन योजना ही थी।
हाँ बिल्कुल, जर्मनी की श्लीफेन योजना। आइडिया ये कि रूस अपनी सेना जुटाए उससे पहले ही पश्चिम में फ्रांस को तेजी से हरा दो।
और रास्ता?
रास्ता तटस्थ बेल्जियम से होकर।
ये तो बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी। ये योजना इतनी ज्यादा टाइम टेबल पर टिकी थी कि जरा भी हेर फेर की गुंजाइश नहीं। और बेल्जियम पर हमला, ये एक ऐसी राजनीतिक भूल थी जिसने ब्रिटेन को युद्ध में आने का सीधा बहाना दे दिया।
मतलब फौजी जरूरत के आगे राजनीतिक नुकसान को देखा ही नहीं।
हाँ, अंदाजा ही नहीं लगाया।
और दूसरी तरफ फ्रांस की योजना XV
वो तो पूरी तरह से आक्रामक जोश पर आधारित थी, जिसे वो कहते थे इलान वाइटल।
मतलब बस हमला कर दो।
हाँ, बस जोशीले अंदाज में दुश्मन पर टूट पड़ो, वो डर जाएंगे। प्लान था सीधे जर्मनी से अल्सिस लोरेन छीनना।
लेकिन ये जमीनी हकीकत से दूर था।
बहुत दूर, खासकर मशीन गन जैसे नए हथियारों के सामने ये तो आत्मघाती था।
और ब्रिटेन, रूस?
ब्रिटेन का कोई पक्का प्लान नहीं था। फ्रांस से कुछ अनौपचारिक बातचीत थी बस, और रूस की योजना थी अपनी स्टीम रोलर सेना को धीरे धीरे जमा करके पूर्व से हमला करना।
तो टकमिन दिखाती हैं कि कैसे ये सब अलग अलग योजनाएं आपस में टकरा कर संकट को और बढ़ा रही थी।
बिल्कुल। अब आता है किताब का दूसरा भाग, युद्ध का शुरू होना, अध्याय 6 से 17।
आग ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद।
हाँ, उसके बाद जो कूटनीतिक भगदड़ मची उसका वर्णन रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ फौजी सोच पूरी तरह हावी हो गई।
मोल्टे का जिक्र आता है।
हाँ, जर्मनी के चीफ ऑफ स्टाफ हेलमुथ वॉन मोल्टके, वो अपनी श्लीफेन योजना पर अड़े रहे। लामबंदी का टाइम टेबल इतना सख्त था
कि जब कैसर विल्हेम ने आखिरी पल में चाहा कि शायद हमला सिर्फ रूस पर हो, फ्रांस पर नहीं,
तो मोल्टके ने लाचारी से कहा ये नामुमकिन है।
बिल्कुल,
लाखों सैनिकों की तैनाती का कार्यक्रम अब नहीं बदला जा सकता।
यही है योजना का अत्याचार,
बिल्कुल,
उसका चरम बिंदु।
और फिर जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया।
अध्याय 10-11।
हाँ, छोटा सा देश, लेकिन राजा अल्बर्ट प्रथम ने लड़ने का फैसला किया।
उनका ये प्रतिरोध अप्रत्याशित था
और नैतिक रूप से बहुत शक्तिशाली संदेश दे गया। इसी तटस्थता के उल्लंघन ने ब्रिटेन की हिचकिचाहट तोड़ दी और वो भी युद्ध में शामिल हो गया।
यहीं से ये विश्व युद्ध बनने लगा।
जी, इसके बाद शुरू होती हैं पहली भयानक लड़ाइयाँ, अध्याय 12 से 17।
बेल्जियम में जर्मन सेना की बर्बरता की खबरें।
हाँ, रेप ऑफ बेल्जियम। उधर फ्रांसीसी सेना अपनी योजना 17 के तहत हमले करती है और भयानक नुकसान उठाती है।
ब्रिटिश सेना भी पहुंचती है।
हाँ, बेफ मॉन्स में जर्मनों से भिड़ती है, लेकिन जर्मन बढ़त इतनी जबरदस्त थी कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं को पेरिस की तरफ एक लंबी थका देने वाली वापसी करनी पड़ती है।
उस वक्त तो लग रहा होगा कि श्लीफेन योजना कामयाब हो रही है।
बिल्कुल, लग रहा था फ्रांस बस गिरने ही वाला है। माहौल सोचे कितना तनावपूर्ण रहा होगा।
लेकिन तभी कहानी पलटती है। किताब का तीसरा भाग, चरमोत्कर्ष, अध्याय 18 से 22।
हाँ, पहले पूर्वी मोर्चे की बात, अध्याय 18। रूस ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अपनी सेनाएं जमा कर लीं।
अच्छा,
इससे जर्मनी को पश्चिम से कुछ सैनिक हटाकर पूर्व भेजने पड़े।
ये श्लीफेन योजना के मूल आइडिया से एक तरह का भटकाव था ना।
हाँ, पर अब ध्यान बट गया। हालांकि टैनेनबर्ग की लड़ाई में रूसियों को भयानक हार मिली,
लेकिन पश्चिम में दबाव थोड़ा कम हुआ।
हाँ, थोड़ा कम जरूर हुआ।
और फिर अध्याय 19 में वो गोएबिन जहाज वाला किस्सा।
हाँ, वो भी बड़ा रोमांचक है। ये जर्मन जहाज ब्रिटिश नौसेना को चकमा देकर भूमध्य सागर से होते हुए तुर्की के इस्तांबुल पहुंच गया,
और जर्मनी ने उसे तुर्की को गिफ्ट कर दिया।
हाँ, चालाकी से।
और इस एक घटना ने तुर्की को जर्मनी के पक्ष में युद्ध में शामिल होने के लिए उकसाया,
जिससे युद्ध का दायरा और फैल गया मध्य पूर्व तक।
सोचिए, एक जहाज का बच निकलना और दुनिया का नक्शा बदल जाना।
और फिर आता है वो निर्णायक मोड़, मार्न की लड़ाई, अध्याय 20 से 22।
मार्न का चमत्कार।
हाँ, जर्मन सेनाएं आगे बढ़ते बढ़ते थक चुकी थीं, उनकी सप्लाई लाइनें बहुत खिंच गई थीं।
और तभी सबसे दाहिने छोर पर जर्मन कमांडर वॉन क्लक ने एक घातक गलती की।
क्या?
पेरिस को घेरने के बजाय वो फ्रांसीसी सेना का पीछा करते हुए पेरिस के दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ गए। इससे उनका दाहिना किनारा मतलब फ्लैंक खुला रह गया।
और ये मौका, और यहीं पर पेरिस की टैक्सियों का वो मशहूर इस्तेमाल हुआ हजारों सैनिकों को फटाफट मोर्चे पर पहुंचाने के लिए।
मैंने सुना है इसके बारे में।
ब्रिटिश सेना ने भी खाई का फायदा उठाते हुए हमला किया, थकी हुई जर्मन सेना का आगे बढ़ना रुक गया,
उनका हौसला टूट गया
और मोल्टके को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। श्लीफिन योजना यहीं दम तोड़ गई।
तो मान की लड़ाई ने युद्ध का नतीजा तय नहीं किया?
नहीं, लेकिन उसने युद्ध का चरित्र तय कर दिया।
मतलब?
मतलब ये कि अब ये कोई छोटी जल्दी खत्म होने वाली लड़ाई नहीं रही, ये एक लंबी खूनी खाइयों में लड़ी जाने वाली जंग में बदल गई जो अगले 4 साल चलनी थी।
इसीलिए जुकमैन इसे इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक मानती हैं।
जी,
क्योंकि इसने युद्ध को लंबा खींच दिया।
तो इस पूरी कहानी से क्या अहम बातें या सबक हम निकाल सकते हैं?
पहला तो शायद वही, कठोर योजनाओं की विफलता।
बिल्कुल, श्लीफिन योजना कागज पर भले ही शानदार लगे, जमीनी हकीकत जैसे बेल्जियम का प्रतिरोध, रूस की तेजी, सेना की थकान, इनसे टकराकर चूर चूर हो गए।
मतलब प्लान बनाओ पर थोड़ा लचीलापन रखो।
हाँ, बदलाव की गुंजाइश रखो।
दूसरा अहम बिंदु, कैसे फौजी सोच राजनीतिक समझदारी पर हावी हो गई।
सही, बेल्जियम पर हमला फौजी जरूरत माना गया, लेकिन उसने ब्रिटेन जैसे बड़े दुश्मन को न्योता दे दिया।
ये दिखाता है कि सिर्फ सैन्य जीत के बारे में सोचना और उसके राजनीतिक नतीजों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है।
तीसरा, व्यक्तियों की भूमिका, नेताओं के निजी गुण जैसे मोल्टके की घबराहट, जॉफ्रे का वो ठहराव, केसर का बड़बोलापन,
ये सब छोटी बातें नहीं थी।
नहीं, इन्होंने घटनाओं को बड़ा मोड़ दिया। इतिहास सिर्फ बड़ी ताकतों से नहीं, इंसानी फैसलों और कमजोरियों से भी बनता है।
चौथा, जटिल हालात में बस पुरानी लीक पर चलते रहने का खतरा।
हाँ, जब जमीनी हकीकत बदल रही थी तब भी ज्यादातर कमांडर अपनी पुरानी सोच, अपनी योजनाओं से चिपके रहे,
नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने में नाकाम रहे,
और ये नाकामयाबी विनाशकारी साबित हुई।
और पांचवा, जो आपने पहले कहा था और मुझे वाकई दिलचस्प लगा, वो तर्कसंगत लगने वाले कदमों के अनअपेक्षित सामूहिक परिणाम।
हाँ, सिस्टम इफेक्ट जैसा, हर देश अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, जो अपने आप में तो ठीक लगता है,
तर्कसंगत है,
पर जब सबने ऐसा किया तो नतीजा हुआ एक सामूहिक विनाश।
आपकी ये पांचवी बात सुनकर मुझे आज के हालात याद आ रहे हैं, जैसे बड़ी कंपनियां या सरकारी विभाग, हर कोई अपने लक्ष्य पूरे करने में लगा है, अपनी प्रक्रियाएं बना रहा है, शायद अपने दायरे में वो ठीक भी हों।
हाँ, हो सकता है,
लेकिन कभी कभी इन अलग अलग हिस्सों के बीच तालमेल की कमी या संवाद की कमी पूरे सिस्टम को मुश्किल में डाल देती है।
बिल्कुल, ये उस दौर की सेनाओं के बीच समन्वय की कमी जैसा ही लगता है ना?
हाँ, ये दिखाता है कि बड़ी तस्वीर देखना कितना जरूरी है। ये किताब वाकई ऐसे विचारों और वाक्यों से भरी है जो दिमाग में रह जाते हैं।
हाँ, बहुत यादगार है।
कुछ पर बात करें, एक तो ये भाव बार बार आता है कि युद्ध का सबसे घातक शत्रु जल्दबाजी है।
सही,
जिस तेजी से लामबंदी हुई, जिस रफ्तार से हमले हुए, उसने सोचने समझने बातचीत करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा।
गति ने जैसे विनाश को तय कर दिया।
बिल्कुल, और दूसरा ये कि कोई भी राष्ट्र उस युद्ध के लिए तैयार नहीं था जिसे वो लड़ने वाला था।
हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, उनकी योजनाएं किसी और तरह के युद्ध के लिए थी और लड़ाई हुई बिल्कुल अलग।
ये योजना और असलियत के बीच की उस गहरी खाई को दिखाता है
जिसे कोई पाट नहीं पाया।
और वो मोल्टके वाला क्षण जब कैसर को जवाब देते हैं, ये नहीं किया जा सकता, लाखों की तैनाती को सुधारा नहीं जा सकता।
उफ, ये दिखाता है कि कैसे योजनाएं खुद एक ताकत बन गई थी। उन्होंने नेताओं को ही कैद कर लिया था,
सिस्टम इंसान पर हावी हो गया था।
हाँ,
और मौन की लड़ाई पर टकमैन का निष्कर्ष कि ये निर्णायक थी इसलिए नहीं कि इसने हार जीत तय की,
बल्कि इसलिए कि इसने निर्धारित किया कि युद्ध जारी रहेगा।
इस लड़ाई ने छोटी जंग की उम्मीद को खत्म करके सालों चलने वाले महायुद्ध का दरवाजा खोल दिया।
ये सोचना भी कितना भारी लगता है।
तो इन सब बातों का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है, मतलब हम क्या सीख सकते हैं?
देखिए, व्यापार जगत में ही ले, ये किताब साफ दिखाती है कि पत्थर की लकीर जैसी योजनाओं से बेहतर है लचीलापन।
हाँ, एजाइल तरीके अपनाना, बदलते हालात के हिसाब से रणनीति बदलना।
प्लान जरूरी है, पर उसे बदलने की हिम्मत भी उतनी ही जरूरी है।
सही।
और संकट प्रबंधन में, क्राइसिस मैनेजमेंट,
हाँ,
दबाव में शांत रहना जैसे जॉफ्रे रहे, या घबरा जाना जैसे मोल्टके, मुश्किल वक्त में दिमाग ठंडा रखना कितना जरूरी है। और बड़े संगठनों में साफ संवाद, कम्युनिकेशन।
बिल्कुल,
सोचिए अगर अलग अलग सेनाओं के बीच या मुख्यालय और फील्ड के बीच बेहतर तालमेल होता तो शायद कुछ विनाश टल सकता था।
ये आज भी कॉर्पोरेट दुनिया में उतना ही सच है।
और भी बहुत कुछ है, कूटनीति में गलतफहमी से बचना।
हाँ।
और नई तकनीक आने पर पुरानी सोच न छोड़ना कितना महंगा पड़ सकता है।
बिल्कुल,
जैसे मशीन गन आ गई पर सोच वही घुड़सवार हमलों वाली।
ये हमें सिखाता है कि बदलाव को अपनाना जरूरी है
और जोखिम का आकलन करते वक्त सिर्फ सीधे खतरों को नहीं बल्कि अनजाने अप्रत्याशित नतीजों के बारे में भी सोचना चाहिए।
इसे यूं सोचे, मान लीजिए कोई टीम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है। द गन्स ऑफ ऑगस्ट हमें याद दिलाएगी कि अब आंख मूंद कर पुराने प्लान पर चलते रहना शायद बेवकूफी हो।
सही,
रुकना पड़ेगा।
रुकिए, टीम से बात कीजिए, हालात समझिए और अगर जरूरत हो तो प्लान बदलने से हिचकिचाइए मत। हो सकता है शुरू में मुश्किल लगे, पर अड़ियल बने रहना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख शायद यह है कि कैसे इंसान की छोटी छोटी कमजोरियां, अहंकार, डर, संवाद की कमी, जिद, ये सब मिलकर इतनी बड़ी तबाही मचा सकती हैं। यह हमें विनम्र बनाता है, या मतलब बनाना चाहिए।
और मेरे लिए ये कि कैसे अलग अलग लोगों के अपने अपने हिसाब से लिए गए तर्कसंगत फैसले मिलकर एक सामूहिक पागलपन या तर्कहीन नतीजा दे सकते हैं।
हाँ,
और ये कि इतिहास लिखा लिखाया नहीं होता, इसे इंसान चुनते हैं। ये युद्ध टाला जा सकता था।
और यही सवाल आज भी खड़ा है।
बिल्कुल, क्या हम आज भी, चाहे वो हमारी कंपनियां हो, समाज हो या देश, वैसी ही कठोर योजनाओं, सामूहिक सोच की गलतियों या संवादहीनता के शिकार हो सकते हैं?
ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं।
बिल्कुल,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत अख्तर फाउंडेशन द्वारा।